अरपारेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मामणि।
आधुनिक एवं समकालीन युग। समकालीन विश्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का व्यापक सर्वेक्षण। समकालीन इतिहास अथवा 20वीं सदी का इतिहास आधुनिक इतिहास की नींव पर खड़ा है। 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो विकास हुआ है उसी को आधार बनाकर 20वीं सदी के इतिहास का ताना बाना बुना गया है। इन शताब्दियों के इतिहास की सार वस्तु है पाश्चात्य सभ्यता का उदय तथा यूरोप वर्चस्व की स्थापना। जैसे कि ब्रून तथा मैमत ने अपने ग्रंथ में लिखा है, आज के विश्व की अवस्था तथा समस्याएं जानने के लिए पाश्चात्य सभ्यता पर आधारित यूरोपीय प्रभुता के विस्तार को ध्यान में रखना जरूरी है। यह विस्तार कई संयुक्त घटनाओं की उपज है। इन घटनाओं को जानना तथा यह देखना कि वे किस प्रकार एक दूसरे के लिए सहायक सिद्ध हुए बहुत आवश्यक है। समकालीन इतिहास की पृष्ठभूमि तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, सामाजिक दशा। औद्योगिक क्रांति से पूर्व विश्व की अधिकांश जनता ग्रामों में रहती थी और कृषि पर निर्भर थी। लोगों की प्रायः समस्त आर्थिक आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। औद्योगिकीकरण के विकास के पश्चात स्थिति में एकदम परिवर्तन आ गया। शहर आर्थिक जीवन के केंद्र बन गए। अब अधिकांश लोग शहरों में रहने लगे। शहरों में लोगों की अत्यधिक भीड़ जमा हो जाने के कारण आवास, स्वास्थ्य और सफाई की समस्याएं जटिल हो गईं। गांव का रहने वाला जब शहर में रहने लगा तब उसके जीवन में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए। गांव में सामाजिक बंधन टूट गए। ग्राम में सामुदायिक जीवन में अनेक नैतिक नियमों का पालन करना पड़ता था। शहरों में उन सब का पालन करना आवश्यक नहीं रहा। दूसरी ओर प्रत्येक मनुष्य को शहरों में अपने गुणों का पूर्ण रूप से विकास करने की स्वतंत्रता भी मिल गई। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ गई। ये मजदूर पूर्णतया मालिकों पर निर्भर थे। जितनी भी मजदूरी मालिक देते उन्हें स्वीकार करना पड़ता था। खानों में कम मजदूरी के कारण स्त्रियों और बालकों से काम लिया जाता था। औद्योगिक शहरों के उन सब इलाकों में जहाँ ये मजदूर रहते थे घनी बसी हुई गंदी बस्तियाँ बस गई थी। मजदूरों को मालिकों की सभी शर्तें मानने की बाध्यता थी। कालांतर में इसी कारण वर्ग संघर्ष बढ़ गया। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज के तीन वर्ग हो गए। पहला वर्ग पूंजीपति अथवा उद्योगपतियों का था, दूसरा मध्यम श्रेणी का था और तीसरा वर्ग मजदूरों का था। औद्योगिक देशों में उस समय व्यक्तिवाद का सिद्धांत चल रहा था कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करती है। इसलिए सरकार ने उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स तथा अन्य समाजवादी नेताओं ने व्यक्तिवाद या राज्य के औद्योगिक अहस्तक्षेप का सिद्धांत का तीव्र विरोध किया और इस तरह मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए समाजवाद का जन्म हुआ और वर्ग संघर्ष पर जोर दिया गया। कालांतर में राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर साम्यवादी और समाजवादी दलों का विकास हुआ। उन्होंने अनेक मजदूर संघ बनाए और वर्ग संघर्ष का नारा तेज किया जिससे औद्योगिक मजदूरों की दशा सुधारने की दिशा में वहां की सरकारें भी सक्रिय हुई। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप नए नए कारखानों व मिलों की स्थापना हुई तथा यातायात के साधनों का विकास हुआ। देशी व विदेशी व्यापार की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसके कारण बैंकिंग पद्धति का जन्म हुआ। उपर्युक्त कार्यों के लिए कुशल व्यक्तियों की अत्यधिक आवश्यकता हुई। अब कारखानों, मिलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बैंकों के प्रबंध के लिए नए नए पदों का निर्माण होने लगा तथा शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं का विस्तार होने लगा। इन सब कारणों से वहां एक नए मध्यम वर्ग का विकास हुआ। दूसरा, आर्थिक उन्नति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पश्चिमी देशों में अनेक नए कारखानों तथा मिलों की स्थापना हुई। फलस्वरूप अनेक औद्योगिक नगरों और नए पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ। इन नगरों में काम करने के लिए हजारों भूमिहीन किसान गांवों से नगरों में आने लगे। औद्योगिक मजदूरों की बहुलता और उस समय की सरकारों को प्रोत्साहन तथा औपनिवेशिक व्यापार से होने वाले लाभ के कारण वहां औद्योगिक क्रांति की रफ्तार बहुत तेज हो गई। औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में हो गया। इसी से औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ। स्वतंत्र शिल्पी प्रायः समाप्त हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियों का हजारों लाखों मनुष्यों के जीवन पर नियंत्रण हो गया। दूसरी ओर इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पश्चिमी देशों में धन की अथाह वृद्धि हुई, क्योंकि वह सस्ता कच्चा माल उपनिवेशों से आयात करने लगा और अपने यहाँ का तैयार माल महंगे दामों पर बेचने लगा। सरकार की आय का अधिकांश भाग उद्योगों पर लगे टैक्स होते थे, अतः आय के लिए कृषि पर निर्भरता समाप्त हो गई। कारखानों में बने माल को देश विदेश में लाने ले जाने के लिए यातायात के साधनों का विकास हुआ। बड़े बड़े जहाजों, बंदरगाहों तथा गोदामों का निर्माण होने लगा। धीरे धीरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में उद्योग धंधों और कृषि का संपूर्ण काम मशीनों से होने लगा। देशी तथा विदेशी व्यापार में अभूतपूर्व उन्नति के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास होने लगा। इससे लोगों का दैनिक जीवन बहुत प्रभावित हुआ तथा एक नई औद्योगिक संस्कृति का विकास हुआ तथा विश्व व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हो गई। औद्योगिक रूप से अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर इन कंपनियों का नियंत्रण आरंभ हो गया। तीसरा, साम्राज्यवाद का उदय। उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार माल की बिक्री के लिए बाजारों की खोज से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता प्रारंभ हुई। पहले इंग्लैंड ने और बाद में अन्य पश्चिमी देशों ने एशिया, अफ्रीका और मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका में कच्चे माल के लिए नए स्रोतों और बाजारों की खोज प्रारंभ कर दी। 19वीं शताब्दी के अंत में जापान का औद्योगिकीकरण हो गया और वह भी इस होड़ में शामिल हो गया। इस होड़ ने उन देशों को जिनका औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था अपने उपनिवेशों, प्रभाव क्षेत्रों या आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के प्रदेशों में बदल दिया। इस प्रकार साम्राज्यवाद का उदय हुआ और इसके अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने प्रभुत्व में आए हुए देशों की अर्थव्यवस्था को अपना स्वार्थ साधने के लिए पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। उपनिवेशों के लिए होड़ का कारण अनेक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुए। समकालीन इतिहास की पृष्ठभूमि और इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत अब आइए जानते हैं राजनीतिक परिस्थिति के बारे में, जो है नंबर 4 पर। इसके अंतर्गत सबसे पहले यूरोप की दशा। एशिया और अफ्रीका पर साम्राज्यवादी विजय की प्रक्रिया के साथ साथ यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच आपसी विरोध और टकराव की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। उपनिवेशों पर अधिकार करने के कारण अक्सर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, फिर भी आम तौर पर इनमें से अधिकांश झगड़ों को आपस में मिल बैठकर सुलझा लिया जाता था तथा युद्ध लड़ने की नौबत नहीं आ पाती थी। आपसी समझौते के बावजूद जिसमें उपनिवेशों पर कब्जा संबंधी विवाद सुलझाए गए, यूरोप की सरकारों का सैन्यीकरण बढ़ता गया। प्रत्येक देश दूसरे देश को भय तथा शंका की दृष्टि से देखता था, अतः उसने अपनी सैनिक और नौसैनिक क्षमता के विस्तार का प्रयत्न किया। अधिकांश यूरोपीय देशों ने ऐसे नियम लागू किए जिनके अनुसार हर वयस्क नागरिक के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य बन गया, जिससे यूरोप क्रमशः शस्त्रागार में बदलता चला गया। यूरोपीय देशों का आपसी टकराव उपनिवेशों के सवाल तक ही सीमित नहीं था, यूरोपीय मामलों को लेकर भी उनमें आपस में विरोध और तनाव थे। यूरोप में 25 देश थे, परंतु उनमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस ही शक्तिशाली देश थे। इनमें इंग्लैंड सबसे अधिक धनी देश था। यूरोपीय महाद्वीप में आर्थिक तथा सैनिक दोनों ही दृष्टियों से जर्मनी सबसे अधिक शक्तिशाली देश था और इंग्लैंड का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। पोलैंड और अल्सेस लॉरेन के कुछ हिस्से जर्मनी के अंग थे। अल्सेस लॉरेन के प्रदेश को जर्मनी ने 1870-71 ईस्वी में फ्रांस के युद्ध से प्राप्त किया था, जिसके कारण फ्रांस और जर्मनी के मध्य आपसी कटुता थी। फ्रांस यूरोप का तीसरा सर्वाधिक औद्योगिक देश था। फ्रांस उस दिन की प्रतीक्षा में था जब वह जर्मनी से अपने अपमान का बदला लेता और अल्सेस लॉरेन को वापस लेता। राजनीतिक दृष्टि से ऑस्ट्रिया हंगरी यूरोप के सर्वाधिक संकटग्रस्त राज्य थे। यूरोप के काफ़ी बड़े भूभाग पर यह फैला हुआ था। इसके राज्य में ऑस्ट्रिया और हंगरी के अलावा पोलैंड का कुछ भूभाग, रोमानिया, इटली का एक हिस्सा और यूगोस्लाविया के दो प्रांत थे। इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी, जिसके कारण जनता में विभाजन या स्वतंत्र होने की मांग होने लगी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी में रूस और सर्बिया स्लाव जनता की राष्ट्रीय भावना भड़का रहे थे, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस तथा सर्बिया के मध्य आपस में तनाव पैदा हो गया। रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश था और उसने बहुत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसके इस विशाल साम्राज्य में बाल्टिक राज्य, फिनलैंड तथा पोलैंड का एक हिस्सा भी शामिल था। इसके अतिरिक्त उत्तरी और मध्य एशिया भी उसके राज्य के अंग थे। यूरोप में कुछ हद तक तनाव का मुख्य कारण टर्की के ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़े होना भी था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में सारा बालकन प्रायद्वीप ऑटोमन साम्राज्य का अंग था। पूरी 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य और रूस के मध्य युद्ध चलता रहा। रूस की इस बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी रोकते रहे। इस कारण रूस का इंग्लैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ तनावपूर्ण संबंध था। संपूर्ण 19वीं शताब्दी के दौरान संधियों और गुप्त समझौतों पर हस्ताक्षर होते रहे और युद्ध की धमकियां जारी की जाती रहीं। इसमें दलबंदी और पुनः दलबंदी होती रही। कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं था तथा कोई भी देश दूसरे देश के समर्थन पर निर्भर नहीं था। 1871 ईस्वी में सेडान के युद्ध में फ्रांस पर जर्मनी की विजय के उपरांत सैनिक संधियों का युग प्रारंभ हो गया। फ्रेंच जनता यह स्वीकार नहीं करती थी कि सेडान का फैसला आखिरी है। जर्मनी भी जानता था कि अवसर मिलने पर फ्रांस 1871 ईस्वी की हार का बदला अवश्य लेगा। अतः जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने यूरोप में गुप्त समझौतों और सैनिक संधियों का युग आरंभ किया। इस प्रकार यूरोप अब दो गुटों में स्पष्टतः विभाजित हो गया। इससे युद्ध की संभावना को बल मिला तथा एक देश की दूसरे देश के प्रति अविश्वास की भावना में बढ़ोतरी हुई। और अब राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत जानते हैं नंबर दो, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। इस अवधि में प्रमुख रूप से दो देश उभरे, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बसे 13 राज्यों को मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका बना। पश्चिम में निवास करने वाली जाति अमेरिकी इंडियनों के भयंकर नरसंहार के पश्चात ही यह देश बन पाया था। उसी प्रकार 1864-65 ईस्वी में दक्षिण के राज्यों में दास प्रथा के विरुद्ध कानून बन जाने के कारण गृह युद्ध छिड़ गया था। गृह युद्ध में संघीय सेना को विजय मिली और दास प्रथा वहां समाप्त कर दी गई। गृह युद्ध समाप्ति के लगभग 3 दशक में ही संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली औद्योगिक देश बना। उसने उद्योग की प्रायः प्रत्येक शाखा में दुनिया के हर देश को बहुत पीछे छोड़ दिया था। 1890 ईस्वी के दशक तक साम्राज्यवादी ताकत के रूप में उसका उदय हो चुका था। 1893 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी महाद्वीप पर अपने प्रभुत्व की घोषणा कर दी। अतः लैटिन अमेरिका अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में आ गया। वहां की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में अमेरिका का दखल हो गया। दूसरी ओर अमेरिकी समाज में वे सब विसंगतियां पैदा हो गई थी जो संसार के अन्य औद्योगिक देशों में थीं। सन 1868 ईस्वी में जापान में शोगुन का शासन समाप्त कर दिया गया और मेजी युग आरंभ हुआ, जिसमें सम्राट के नाम पर उसके सलाहकार मंडल के अधीन जापान का शासन चलाया जाने लगा। मेजी युग के 4 दशक में ही वह दुनिया का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक देश बन गया, पर यह कार्य किसानों की कीमत पर किया था, अतः वहां आम जनता में भयंकर गरीबी छा गई। भयानक गरीबी के कारण जापान में वहां पर बने माल की खपत बहुत कम थी, इसलिए उसका भी ध्यान उपनिवेश बनाने की ओर गया और चीन, कोरिया, मंचूरिया आदि एशियाई देशों को अपने साम्राज्य का अंग बनाने के लिए वह प्रयत्न करने लगा। तीसरा, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। जब से साम्राज्यवादी देशों ने अपना परोक्ष या प्रत्यक्ष नियंत्रण कायम किया, उसी समय से उनको जनता के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे समय गुजरता गया, प्रतिरोध का पुराना स्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में बदलता गया। इसका लक्ष्य विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना था। इन राष्ट्रवादी आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित समाज रचना था। आंदोलनकारियों को अक्सर अपने ही देश की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना पड़ता था और उन तत्वों के विरुद्ध भी संघर्ष करना पड़ता था जो देश के प्रगति में बाधक थे, किंतु यह सब संघर्ष का प्रारंभ ही था।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।